ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए की परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब साल में दो बार होंगी। द्वितीय मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू। नई दिल्ली में हुई बजट पूर्व बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्र से एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए आर्थिक सहायता देने का आग्रह किया। और आज कबीर जयंती पर हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। बस्तर में आज से गोंचा पर्व की शुरुआत हुई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की परीक्षाओं को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति को एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है। समिति को 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा कानून बनाया है। इसमें दोषियों को अधिकतम 10 साल की और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आधिकारिक गजट में प्रकाशित एक अधिसूचना में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि कानून के प्रावधान आज से लागू हो जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग भर्ती परीक्षा निकायों और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। इस बीच इस वर्ष की संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा मंगलवार से बृहस्पतिवार के बीच होनी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा कि इसके आयोजन के लिए संशोधित कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बाद में घोषित किया जाएगा। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब साल में दो बार होंगी। मंडल ने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी की द्वितीय मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। इसमें वे सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जो प्रथम मुख्य परीक्षा में पंजीकृत हैं। वहीं ऐसे सभी विद्यार्थी जो पूरक, अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण हैं, वे भी श्रेणी सुधार के लिए द्वितीय मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। द्वितीय मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 30 जून तक चलेगी। वहीं विलंब शुल्क के साथ 1 और 2 जुलाई को आवेदन जमा किए जा सकते हैं। नियमित परीक्षार्थी अपने विद्यालय से तथा अवसर परीक्षार्थी समन्वय संस्थाओं के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा संबंधी जानकारी मंडल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजभवन में सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को सरकार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही राज्य की वर्तमान स्थिति, किसानों को खरीफ फसल के लिए उपलब्ध कराए जा रहे खाद और बीज तथा प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया। इस अवसर पर समसामयिक विषयों पर भी चर्चा हुई। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बजट पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी शामिल हुए। इस दौरान श्री चौधरी ने केन्द्र से एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए आर्थिक सहायता देने का आग्रह किया। बैठक में उन्होंने राज्यों को विशेष सहायता की राशि, प्रदेश में रेल नेटवर्क के विस्तार सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव और सुझाव दिए। बैठक में श्री चौधरी ने छत्तीसगढ़ की नई राजधानी को सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, बैंकिंग और ग्रीन एनर्जी के हब के रूप में विकसित करने के लिए बजट में आर्थिक सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोहन साहू ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री के बाद श्री साहू पहली बार बिल्हा नगर पंचायत पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य बनने के बाद पहली बार प्रदेश के किसी सांसद को शहरी विकास मंत्रालय का प्रभार मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र से नगरीय निकायों को भरपूर राशि मिलेगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। इस अवसर पर बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने न्यायाधीशों का तबादला आदेश जारी किया है। इसके तहत 4 जिलों के जिला और सत्र न्यायाधीश तथा 8 अपर जिला और सत्र न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया गया है। साथ ही हाईकोर्ट स्थापना के न्यायाधीश का भी तबादला किया गया है। तबादला सूची के अनुसार न्यायाधीश प्रज्ञा पचौरी को दुर्ग, जितेन्द्र कुमार को रायगढ़, मोहम्मद रिजवान खान को कोरिया और श्याम लाल नवरतन को बालोद जिले का प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। गिरौदपुरी में जैद खाम के क्षतिग्रस्त होने के बाद बलौदाबाजार कलेक्टोरेट में हुई आगजनी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस पर निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। रायपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री बघेल ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों पर पुलिस दबाव बनाकर गलत ढंग से कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य के बलौदाबाजार जिले में लागू धारा 144 का दायरा सीमित कर दिया गया है। अब केवल बलौदाबाजार नगर की कंपोजिट बिल्डिंग के 100 मीटर दायरे तक ही धारा 144 लागू रहेगी। हालांकि नगर के शासकीय कार्यालयों के आसपास प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस और नारेबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध फिलहाल बरकरार रहेगा। जिला कलेक्टर ने आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि बीते 10 जून को नगर में विरोध प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आगजनी की घटना के बाद धारा 144 लागू की गई थी। आज कबीर जयंती है। इस मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर सहित अन्य जगहों पर भी आज कबीर पंथ के लोगों ने रैलियां निकाली। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि कबीर साहिब न सिर्फ एक आध्यात्मिक संत थे बल्कि वे एक समाज सुधारक और युग प्रवर्तक भी थे। कबीर साहिब ने अपने दोहों और भजनों के माध्यम से समाज को एकता, प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया। वहीं राज्य सरकार ने कबीर जयंती के अवसर पर आज पूरे प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया है। इस दौरान सभी सरकारी शराब दुकानें बंद हैं। होटल, बार और अन्य जगहों पर भी शराब बेचने और परोसने की मनाही है। बस्तर में आज से गोचा पर्व की शुरुआत हो गई है। इस पर्व के दौरान जगदलपुर के जगन्नाथ मंदिर में चंदन यात्रा विधान किया गया और देव विग्रहों को चंदन से स्नान कराया गया। इस दौरान भगवान के स्नान के लिए इंद्रावती नदी के महादेव घाट से पवित्र जल लाने की परंपरा निभाई गई। मान्यता के अनुसार देव स्नान यात्रा पूजा विधान के बाद भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ हो जाते हैं। इसे अंसर काल कहा जाता है। इस दौरान कल से लेकर 5 जुलाई तक भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं होंगे। दुर्ग स्थित भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर में भी आज भगवान जगन्नाथ के स्नान यात्रा की रस्म निभाई गई। मंदिर के पुजारी तुषार कांति महापात्र ने बताया कि नव यौवन दर्शन और नेत्रोत्सव के बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोंचा पर्व की शुरुआत पर बस्तर सहित सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कामना की है कि महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा सब पर सदैव बनी रहे। केंद्रीय जीएसटी विंग ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले में कार्रवाई करते हुए रायपुर में एक संस्थान के संचालक को गिरफ्तार किया है। संस्थान संचालक पर फर्जी फर्मों से 5,73,00,000 रूपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का आरोप है। आरोपी को गिरफ्तार कर सीजीएम अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने आरोपी की न्यायिक हिरासत को मंजूरी दे दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने अंबिकापुर में एलजीएम सहित 4 कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रार्थी के अनुसार उसकी पुश्तैनी जमीन का राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के नाम पर उदयपुर के एसडीएम ने 50,000 रूपये की मांगी थी। शिकायत मिलने पर ACB की टीम ने कार्रवाई कर आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं रायगढ़ SDM ने शासकीय कार्य में भूमि स्वामी से गलत तरीके से राशि मांगने का मामला संज्ञान में आने के बाद गोपालपुर के पटवारी को निलंबित कर दिया है। पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रायपुर जिले के तिल्दा ब्लॉक में अदानी पावर लिमिटेड के प्रस्तावित 1600 मेगावाट इकाई के विस्तार के लिए आज जनसुनवाई आयोजित की गई। इस जनसुनवाई में तिल्दा तहसील के रायखेड़ा, भाटपारा, चिचोली, गैतरा, ताराशिव, बहेसर, छत्तौर, खमरिया सहित 14 गांवों के ग्रामीण शामिल हुए। इस अवसर पर ग्रामीणों को परियोजना के बारे में जानकारी दी गई। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस बार के अंक में जांजगीर चांपा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून सरगुजा संभाग को छोड़कर राज्य के बाकी 4 संभागों में पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में मानसून के अन्य जगहों पर भी सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी भी दी गई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब एरिया की स्थापना दिवस के मौके पर आज रायपुर के कोटा में पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के लिए नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने NTA की परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब साल में दो बार होंगी। द्वितीय मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू। नई दिल्ली में हुई बजट पूर्व बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्र से एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए आर्थिक सहायता देने का आग्रह किया और आज कबीर जयंती पर हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। बस्तर में आज से गोंचा पर्व की शुरुआत हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।